हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। धृति की सादगी के विपरीत सृष्टि स्टूडियो पहुँची तो उसने महंगी डिज़ाइनर ड्रेस पहनी हुई थी। मेकअप भरे चेहरे पर गुरूर साफ छलक रहा था। यकीनन वो खूबसूरत थी और फिगर भी कमाल का मेंटेन किया हुआ था। किसी मॉडल या हीरोइन से किसी सूरत में कम नहीं थी वो, और शायद इसी बात का घमंड उसे था, इसलिए वो अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं थी। इस समय धृति और उसमें सिर्फ एक फर्क करना मुमकिन था, और वो था धृति के अपर लिप का तिल, वरना दोनों हूबहू एक सी दिख रही थीं। अगर धृति को भी इसी तरह से तैयार कर दिया जाता तो दोनों में अंतर करना लगभग नामुमकिन ही था, और शायद इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी पहचान बदली थी और कोई उन्हें पहचान भी ना सका था। सृष्टि स्टूडियो पहुंची, तब तक माधुरी वहां पहुंच चुकी थी। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो वो भौंचक्की रह गई। फोटो की बात अलग थी, पर अब उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी शक्ल से लेकर कदकाठी, बॉडी फिगर सब धृति से मिलता था। अब उसे समझ आ रहा था कि दोनों बहनों में इतनी सिमिलैरिटी है कि कोई भी उन्हें पहचानने में धोखा खा सकता था। शायद इसलिए अर्णव भी दोनों को डिस्टिंग्विश ना कर सका था। जहां सृष्टि की शक्ल सूरत देखकर वो दंग रह गई थी, वहीं उसका एटीट्यूड देखकर उसकी भौहें तन गई और तन बदन जल उठा। अब उसे धृति और सृष्टि में जमीन और आसमान का अंतर नजर आ रहा था। जहां धृति बड़े ही प्यार से बात करती थी, वहीं सृष्टि की आवाज में भी उसकी अकड़ और गुरूर छलक रहा था। आते ही वो वहां काम करने वाले एक लड़के से भिड़ गई थी, क्योंकि गलती से उसे हल्का सा टक्कर लग गया था। माधुरी पहले तो कुछ दूरी पर खड़ी उसे घूरती रही, फिर होठों पर कुटिल मुस्कान सजाए उसने उसके तरफ कदम बढ़ा दिए। सृष्टि अब भी उस लड़के को घूरते हुए खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी, जब एक अनजानी सी आवाज उसके कानों से टकराई। सृष्टि, अपना नाम पुकारे जाने पर उसने तुरंत ही सर घुमा कर देखा तो उसके सामने माधुरी खड़ी थी, जिसे वो तो नहीं जानती थी। यस, सृष्टि ने सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए जवाब दिया। माधुरी अब मुस्कुराई, फिर अपनी हथेली उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली, हाय, आई एम माधुरी, कबीर सर की असिस्टेंट। माधुरी ने अपना इंट्रो दिया, जिसे सुनकर सृष्टि को कबीर की बात याद आ गई थी कि उसकी असिस्टेंट उसे स्टूडियो में मिलेगी। सृष्टि ने अब माधुरी को ऊपर से नीचे तक देखा। ब्रांडेड कपड़े से लेकर कलाई पर बंधी महंगी घड़ी, पैरों में मौजूद महंगी हील्स और चेहरे पर झलकता आत्मविश्वास का गुरूर उसकी हैसियत बयां कर रहा था कि वो एक आम एम्प्लॉय नहीं थी। माधुरी पर क्विक सर्वे करने के बाद सृष्टि ने उसके आगे बढ़े हाथ को थामा और सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, हाय, आई एम सृष्टि, सर ने बताया था। माधुरी एक बार फिर मुस्कुराई। वहीं उसकी बात सुनकर सृष्टि ने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा, कबीर नहीं आया? इतने हक से उसने कबीर का नाम लिया कि माधुरी के तन बदन में आग लग गई। खून गुस्से से उबाल मारने लगा और आंखों में क्रोध की लपटें उठने लगीं। उसका बस चलता तो कबीर का नाम लेने के जुर्म में अभी उसकी जबान खींच लेती या उसे जिंदा जलाकर राख कर देती, पर उसने अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अपने गुस्से के कारण वो पूरा प्लान खराब नहीं कर सकती थी। उसने एक पल उसे घूरा और मन ही मन अपनी भड़ास निकालने लगी। कमीनी चुड़ैल, कबीर का नाम तो ऐसे ले रही है जैसे इसका खसम हो। जी तो चाह रहा है कि मुंह नोच लूं इसका। वो हाल करूं कि कबीर तो क्या, दुनिया में किसी मर्द का नाम कभी अपनी जबान पर लाने की हिम्मत न कर सके। पर मजबूरी है मेरी, जो अभी चाहकर भी तेरे साथ कुछ नहीं कर सकती, पर छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, सब हिसाब बराबर करूंगी, बस तू तो देखती जा। माधुरी के ईविल इरादे से अनजान सृष्टि अब भी अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी। माधुरी ने मन ही मन अपनी भड़ास निकाली, फिर झूठी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, सर को कुछ जरूरी काम था, कुछ देर में आ जाएंगे, तुम चलो, मैं तुम्हें चेंजिंग रूम दिखा देती हूँ। माधुरी सृष्टि को अपने साथ लेकर चली गई। कुछ देर में सृष्टि ने अपने आउटफिट बदले, मेकअप आर्टिस्ट ने उसका मेकअप किया, हेयर स्टाइलिस्ट ने बालों को सेट किया और उसके बाद शूट शुरू हुआ। उसमें भी माधुरी ने उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ा था। कभी उसके पोज में कमियां निकालती तो कभी बॉडी पॉस्चर उसे पसंद न आता तो कभी एक्सप्रेशन में खामियां ढूंढती। एक एक तस्वीर में उसने 10-10 बार उसे टोका होगा। गुस्सा और चिढ़ सृष्टि के चेहरे पर झलकने लगा था, पर मजबूरी थी कि उसकी हर बात माननी पड़ रही थी। उस पर माधुरी ने सबको अपने साथ मिला हुआ था। कितने बार तो उसने ड्रेसेस बदलवाए थे। कुल मिलाकर माधुरी ने एक एक मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया था। सृष्टि को सताने का एक मौका उसने अपने हाथ से जाने नहीं दिया था। दोपहर को शुरू हुआ फोटोशूट शाम 6 बजे तक जारी रहा। माधुरी ने खूब मजे लिए और उसकी हरकतें देखकर अपने अपने केबिन में बैठे अर्नव और कबीर दोनों के लबों पर मुस्कान छाई रही। शूट खत्म होने का टाइम हुआ तो माधुरी ने कबीर को मैसेज करके आने को कह दिया। सृष्टि चेंज करने गई थी और माधुरी वहाँ का सेटअप हटवाने लगी थी। सृष्टि जैसे ही चेंज करके स्टूडियो हॉल में पहुँची, उसकी नज़र कबीर पर चली गई जो फोटोग्राफर से कुछ बात कर रहा था। सृष्टि, जिसका मूड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, कबीर को देखते ही उसके लबों पर सिडक्टिव मुस्कान फैल गई और शब्दों में मिठास घोलते हुए उसने कबीर की ओर कदम बढ़ा दिए। हाय कबीर, उसकी आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कबीर ने भी पलट कर उसे देखा और इतने में सृष्टि आकर उसके सीने से लग गई। ये इतने अचानक हुआ कि कबीर को सोचने समझने तक का वक्त न मिला। वो शॉक्ड सा बुत बना खड़ा रहा। आसपास मौजूद लोग आंखों की पुतलियां फैलाए और मुंह खोले अचरज से उन्हें देखने लगे। माधुरी की तो भौहें तन गईं। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और जलती निगाहों से कबीर को घूरने लगी। कबीर की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो एकदम से घबरा गया और सकपकाते हुए उसने सृष्टि को खुद से दूर करते हुए हड़बड़ाते हुए कहा, हाय सृष्टि। बेचारे कबीर की डर के मारे हवा टाइट थी। सामने उसकी प्यारी मधु साक्षात चंडी का रूप धरे उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी ही उसका सर उसके धड़ से अलग कर देगी, और यही भय उसकी आंखों चेहरे के साथ आवाज में भी झलकने लगा था। पर सृष्टि ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और शब्दों में एक्स्ट्रा मिठास घोलते हुए बोली, तुम कितने देर से आए, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। कबीर की निगाहें जो अब भी माधुरी पर टिकी थीं, वो अब सृष्टि की तरफ घूम गई। उसने खुद को संभाला और हल्की मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोला, काम में फंस गया था, पर तुम्हारा फोटोशूट तो अच्छे से हो गया। फोटोशूट का जिक्र होते ही उसका मुंह बन गया, फिर उसने सर झटकते हुए जवाब दिया, हाँ हो गया, अब हम कहीं बाहर चलें, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। कबीर ने एक माधुरी को देखा जिसके चेहरे के भाव ये बताने को काफी थे कि ये ज्वालामुखी अब किसी भी पल फटने को तैयार है। बेचारे कबीर को अपनी हालत पर तरस आने लगा, पर अब कुएं में छलांग लगा ही दी थी तो मौत से क्या डरना। उसने थूक निगलते हुए अपने सूखते गले को तर किया और सृष्टि की ओर नजरें घुमाते हुए सर हिला दिया। अगले ही पल माधुरी गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। बेचारे कबीर ने अपनी आंखें भींच लीं, मन ही मन फैसला किया कि अभी सृष्टि नाम के टारगेट पर काम किया जाए, माधुरी को बाद में समझा देगा। सृष्टि और वो कार में बैठे और पब के लिए निकल गए। सृष्टि की ही फरमाइश थी ये तो कबीर ने भी हामी भर दी। सारे रास्ते वह कबीर को छेड़ती रही, कभी अपनी बातों से तो कभी अदाओं से। कबीर ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस मन ही मन सोचता रहा कि अपनी इन्हीं अदाओं और मीठी मीठी बातों में उसने आकाश को फंसाया होगा, और इतना ही काफी था उसके गुस्से और नफरत को बढ़ाने के लिए। पर उसने अपने भावों को चेहरे पर नहीं आने दिया।
दोनों पब पहुँचे तो पहले एक दो ड्रिंक्स ली, फिर सृष्टि उसकी बाँह पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले आई। कबीर ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसे अपनी मनमानी करने दी। गाने की बीट पर झूमते हुए सृष्टि उसे अपनी अदाओं और हुस्न से रिझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कभी अपने बालों के साथ खेलती तो कभी कबीर के ज्यादा नज़दीक जाकर उसके चेहरे और बाहों को सहलाती। कबीर की जगह अगर इस वक्त कोई और लड़का होता तो शायद अब तक उसके हुस्न के शबाब में डूब चुका होता, पर कबीर भावहीन बना रहा। जब सृष्टि की नज़दीकियाँ उसकी छुअन उससे और बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने उसकी बाँह पकड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा, पर सृष्टि नागिन जैसे उससे लिपट गई और आँखों में मधुशाला सा नशा छलकाते हुए उसके चेहरे को, गर्दन पर अपनी उंगलियों को बेतरतीब से घुमाते हुए सेडक्टिव अंदाज में बोली, दूर कहाँ जा रहे हो बेबी, ये तो नज़दीकियाँ बढ़ाने का वक्त है। समा कितना रोमांटिक है, शराब भी है और शबाब भी, ऐसा हुस्न और ऐसी दीवानगी कहाँ मिलेगी तुम्हें। कबीर पहले तो भावहीन सा उसे देखता रहा, फिर उसके बालों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए उसके सर को हल्का ऊपर किया और निगाहों से निगाहें मिलाते हुए मुस्कुराकर बोला, मेरा फंडा जरा उल्टा है जानेमन, जिस्मानी नहीं मुझे रूहानी मोहब्बत की तलाश और तलब है। इतना कहकर उसने सृष्टि को खुद से दूर किया और वापस अपनी जगह जाकर बैठ गया। सृष्टि, जो उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने की हर संभव कोशिश कर रही थी, उसका जवाब सुनकर खिसिया गई और हाथ मलते हुए खुद से बोली, सृष्टि वो नशा है जो एक बार किसी पर चढ़ जाए तो असर मरते दम तक नहीं उतरता। इस नशे ने अच्छे अच्छों को बर्बाद किया है और अब अगली बारी तुम्हारी है। देखती हूँ मैं कब तक तुम रेजिस्ट करते हो, कब तक मेरी अदाओं और हुस्न के मोह जाल से बचे रहते हो और कब तक रोक पाते हो खुद को मेरे करीब आने से। अपने रूप के गुरूर में चूर सृष्टि खतरनाक इरादों को मन में छुपाए कबीर की ओर बढ़ गई और उसकी गोद में बैठते हुए उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए मुस्कुराई। इंटरेस्टिंग, तुम्हारा ये एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस पसंद आया मुझे। संभल कर जाने मन, कहीं ऐसा न हो कि ये पसंद प्यार में बदल जाए और अपना दिल हार बैठो मुझ पर। कबीर कुटिलता से मुस्कुराया और उसकी बात सुनकर सृष्टि खिलखिला उठी। सृष्टि कभी नहीं हारती, उसने सिर्फ जीतना सीखा है और बहुत जल्द मैं तुम्हारा दिल भी जीत लूंगी, सृष्टि ने खुद पर इतराते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा। उसकी बात सुनकर कबीर तिरछा मुस्कुराया। ये दिल है मेरा, कोई खिलौना नहीं, इसे जीतना इतना भी आसान नहीं। चैलेंजिंग काम करने में बहुत मजा आता है मुझे। सृष्टि का जवाब सुनकर कबीर बस मुस्कुराकर रह गया। कुछ देर दोनों वहीं ठहरे, कुछ ड्रिंक्स भी लीं, उसके बाद दोनों पास के ही रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचे। कबीर ने सृष्टि को उसकी बिल्डिंग के सामने ड्रॉप किया और मन ही मन कुछ सोचते हुए वहां से चला गया। टू बी कंटिन्यूड। गुस्से में ज्वालामुखी बनी माधुरी कबीर का क्या हाल करेगी, सोचिए सोचिए।